अहाना, एक सवाल पूछो, जवाब देंगी। अक्षय के शब्द अहाना के कानों तक पहुंचे और उसकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। जी, एक बार फिर उसके गुलाबी लबों से पहले उन बड़ी बड़ी कजरारी आंखों ने सवाल किया था। आपने अभी कहा था कि जब हमारी ओर से जवाब देने में देर हुई तो आपको पछतावा हुआ कि आपको दहेज की बात मुझसे नहीं करनी चाहिए थी। आपको लगा था कि जवाब में हुई देरी की वजह वही है। तो क्या जब आपने दहेज वाली बात कही कि अगर दहेज लेंगे तो आप रिश्ते से इनकार कर देंगी, तब आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इसके कारण हमारा रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट सकता है? अक्षय ने गंभीरता से सवाल किया। अहाना के लब कुछ पल खामोशी धारण किए मौन रहे, निगाहें अक्षय पर ठहरी रहीं। फिर उसने सर हिलाते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। आया था, पर हम दहेज की आग की लपटों को अपना भविष्य और अपने मम्मी पापा की बाकी की जिंदगी को झुलसाने नहीं दे सकते थे। आप कहना क्या चाहती हैं? अक्षय ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। शायद उन शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने में वो असमर्थ था। अहाना ने अब अपने जवाब को विस्तार से उसके सामने रख दिया। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो अंदर ही अंदर हमारे समाज को खोखला करती जा रही है। पहले के जमाने में माता पिता बेटी को विदा करते हुए सब कुछ अपनी ओर से देते थे ताकि उस नए घर में उनकी बेटी को कोई परेशानी ना हो, पर धीरे धीरे ये परंपरा बन गई। और आज का वक्त ऐसा है कि लड़की के गुणों को नहीं, उसके साथ दहेज कितना आ रहा है, इस बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है। मांगने वाले मुंह फाड़ कर मांगते हैं और डिमांड रखने से पहले ये तक नहीं सोचते कि सामने वाला कैसे पूरी करेगा उनकी डिमांड। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए माँ बाप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसकी शादी में लगा देते हैं, पर लालच का कुआं कभी भरता नहीं है, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अहाना के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। आंखों के सामने बीते कल की कुछ खौफनाक दर्द भरी यादें घूमने लगीं। हमारी एक दोस्त थी, उसकी शादी करीब 2-2.5 साल पहले हुई थी और लड़के वालों ने अच्छा खासा दहेज मांगा था। अंकल ने रिश्ता, घर परिवार और लड़का अच्छा देखा तो अपनी FD वगैरह तुड़वाकर घर गिरवी रखकर भी दहेज की मांग पूरी की, पर कुछ कमी रह गई और बीच शादी में लड़का मंडप पर से उठ गया। अंकल की 3 बेटियां ही थीं, उन्होंने लड़के वालों के आगे हाथ जोड़े कि शादी होने दे, बाद में वो बाकी पैसे भी दे देंगे, पर लड़के वाले नहीं माने। उसके मामा ने अपने पैसे देकर शादी संपन्न करवाई, पर उनका लालच यहीं नहीं थमा। आए दिन कुछ ना कुछ नई डिमांड आती जिसे पूरा ना कर पाने पर हमारी दोस्त को टॉर्चर करते थे। बहुत सहन किया उसने, अपने परिवार की स्थिति देखते हुए जितना खुद से संभाल सकी संभालने की कोशिश की, पर जब पानी सर से ऊपर चला गया और अपने परिवार को अपने कारण सफर करते देखा तो उसने डिवोर्स लेने का फैसला किया। पर उसके पति और ससुराल वालों ने उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा दिए, उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए, और आखिर में हमारी दोस्त ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद उसके घर में आग लगी जिसमें बाकी सब भी जलकर राख हो गए। अहाना का गला भर आया, आंखें पसीज गईं। पल भर रुकने के बाद उसने भरी आँख छोड़ते हुए आगे कहना शुरू किया। आखिरी बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब जिस हालत में हमने उसे देखा, उसे याद करते हैं तो आज भी सिहर उठते हैं। उसने हमसे बस एक ही बात कही थी कि उसकी जैसी बेवकूफ़ी हम कभी न करें। दहेज की आग में अपना भविष्य, खुशियाँ और अपने परिवार की खुशहाली को जलाकर भस्म ना करें। जैसे चाहे लड़के से शादी करें, पर उस लड़के से कभी शादी ना करें जिसके लिए हमसे ज्यादा जरूरी हमारे साथ आने वाला दहेज हो, और कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करें। हम अपने परिवार की स्थिति जानते हैं और अपने पापा और भाई को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी शादी एक अच्छे घर में करवाने और हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो दहेज देने से भी पीछे नहीं हटते, पर हम इस रिश्ते की बुनियाद लालच की जमीन पर नहीं रखना चाहते थे। हमारी एक और बहन है, छोटा भाई है और हमारे पापा रिटायर हो गए हैं। भाई के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है और उनकी भी शादी होने वाली थी। हमारे पापा इतने खुददार हैं कि कभी भी हमारी कमाई को घर में खर्च नहीं करने देते थे। फिर हमारी शादी के बाद तो हम चाहकर भी अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। शादी में भी पापा हमारी कमाई का 1 रुपया नहीं लगाते जानते थे हम। हम उनका सहारा बनना चाहते थे पर बेबस थे। उनकी जिम्मेदारियों को नहीं बांट सकते थे, पर उनके कंधों पर अनचाहा बोझ भी नहीं बढ़ाना चाहते थे। नहीं चाहते थे कि हमारे सुनहरे भविष्य के लिए हमारे पापा और परिवार को सफर करना पड़े। हम किसी ऐसे रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते थे जहां हम पल पल घुट घुट कर जिए और हमारे परिवार पर बोझ बन जाएं। खामोशी से अहाना की बातें सुनता अक्षय महसूस कर रहा था उसकी भावनाओं को। उसकी सोच का कायल हो चुका था वो, और अहाना की इज्जत उसकी नजरों में आज और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर गर्व के भाव थे और लबों पर दिलकश मुस्कान। उसने अहाना की भीगी निगाहों की नमी को अपने अंगूठे से चुरा लिया, फिर अपनी हथेली उसके सर पर रखते हुए बोला, आप बहुत ब्रेव हैं,
मुझे गर्व है आप पर। हर लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती। जितनी आप ब्रेव हैं, उतनी समझदार भी हैं। हमारा परिवार हमारी हिम्मत है, उनका सहारा था तभी हम ये कदम उठा सके, वरना शायद हम भी बाकी लड़कियों जैसे ही होते। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आपसे बहुत प्यार भी करती है। अक्षय के इस बात पर अहाना फीका सा मुस्कुरा दी, पर उसकी भीगी पलकें उसके दिल के हाल की चुगली कर गई थी। शायद फैमिली के जिक्र से उसे उनकी याद सताने लगी थी, और उसके बिना कहे ही अक्षय ये बात समझ चुका था। उसने बातों का रुख मोड़ते हुए उसका ध्यान भटकाना चाहा। अहाना, आपको पता है आप मुझे कांच की नाजुक सी गुड़िया जैसी लगती हैं। आपको छूने से भी कतराता हूं मैं। मन में एक डर रहता है कि कहीं मेरे जरा से छूने भर से इस कांच की नाजुक गुड़िया को चोट ना लग जाए, अनजाने में कहीं मेरे हाथों ये नाजुक सी गुड़िया टूट कर न बिखर जाए। अहाना के कानों में अक्षय की आवाज पड़ी और उसने चौंकते हुए पलकें उठाकर उसे देखा। लबों पर कातिलाना मुस्कान बिखेरे वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। इतने भी नाजुक नहीं हम कि आपके छूने भर से बिखर जाए। क्या वाकई आप इतनी नाजुक नहीं? अक्षय ने हैरत से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, मानो इस जवाब पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हो। अहाना ने झट से सहमति में सर हिलाया। तो मैं छू सकता हूं आपको? मासूम फरमाइश आई थी और अहाना के लब हौले से मुस्कुरा उठे थे। हक है आपका। पक्का? मैं आपको छूकर देखूं कि आप बिखरती हैं या नहीं? अहाना ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए शब्दों पर जरा जोर दिया था। उसकी लबों पर बिखरी दिलकश मुस्कान और शरारत से सिमटी आंखों ने अहाना के एतमाद को डगमगाने पर मजबूर कर दिया। जिस अंदाज में अक्षय ने ये बात कही थी, अहाना के चेहरे पर कुछ रंग बिखरे थे और पलकों ने झुककर उसके रुखसारों को चूम लिया था। लबों ने चुप्पी साधी और जवाब इशारों में मिला था। अक्षय की सरद शरारती उंगलियां उसकी बाह पर थिरक उठी। अहाना के बदन में सहरन सी दौड़ गई, पेट में तितलियां सी उड़ने लगी, सीने में मौजूद दिल बेचैनी से जोरों से धड़क उठा और सांसें अनियंत्रित होने लगी। जाने क्या खास था उसके लम्स में कि अहाना छुई मुई के पौधे जैसे खुद में ही सिमटने लगी। ये देखकर अक्षय की मुस्कान गहरी गई। देखिए, खुद में ही सिमटने लगी आप, तभी तो डर लगता है मुझे। अक्षय ने अपने हाथ को पीछे हटाना चाहा, पर अहाना की उंगलियों ने उसकी उंगलियों को खुद में उलझाते हुए उसकी हथेली को थाम लिया। अक्षय ने चौंकते हुए निगाहें अहाना की ओर उठाई। अहाना अब तक खुद को संभाल चुकी थी। निगाहें अक्षय की निगाहों से टकराई और सौम्य सी मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। आपको हमारी ओर बढ़ते अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत नहीं, आपके स्पर्श से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना विश्वास है आपको मुझ पर?
जीवन साथी बना लिया आपको अपना, विश्वास नहीं करेंगे आप पर? और अगर आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? और कैसे आपके साथ इस रिश्ते को निभाएंगे जिससे हम दोनों जुड़े हैं? अक्षय के सवाल के बदले अहाना का सवाल आया था, पर उस सवाल में कहीं जवाब भी छुपा था, जिसे समझते हुए अक्षय के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। आपने कहा मेरा हक है आप पर? जी, अहाना ने नासमझी से सर हिलाया। फिर तो मैं इस हक का थोड़ा और इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अक्षय की आंखें शरारत से चमकी और अहाना आंखों की पुतलियां फैलाए असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। आई वॉन्ट टू फील यू, कैन आई? अक्षय ने बड़े ही अदब से अपनी ख्वाहिश जाहिर की और साथ ही ये भी जता दिया कि वो उसे पूरा करने के लिए उसकी इजाज़त की दरकार थी। अहाना कुछ पल कन्फ्यूजन भरी निगाहों से उसे तकती रही, फिर सहमति में सर हिलाया। यस, यू कैन। अहाना की इजाज़त मिलते ही अक्षय ने उसे साइड से हक करते हुए अपने सीने से लगा लिया। पहले तो अहाना कुछ असहज सी हो गई, एक बार फिर उसके दिल की धड़कनें बगावत पर उतर आई थी। अजीब सी बेचैनी और बेकरारी ने उसको घेर लिया, सांसें बेतरतीब हुईं और कुछ मीठे मीठे से एहसास मन को गुदगुदाने लगे। ये नज़दीकियाँ उसके दिल को घबराहट से भर गई, पर धीरे धीरे एक सुकून सा छाने लगा और झिझकते हुए उसने मेहंदी रची अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। अक्षय के पहल पर उसका ये रिस्पॉन्स उसके लबों पर मुस्कान बनकर बिखर गया। कुछ देर यूं ही दोनों एक दूजे से लिपटे इन बेकरारियों में घुले सुकून को महसूस करते रहे। फिर अक्षय ने अहाना को खुद से जुदा किया और वो भी झिझकते हुए उससे थोड़ी दूर हटकर बैठ गई। अक्षय ने उसके चेहरे को एक नज़र देखा, जिस पर बिखरी हया की गुलाबी रंगत उसे और हसीन बना रही थी। फिर उसकी दोनों बाहों को थामते हुए बोला, मैंने सुना है कि दुल्हन की मेहंदी में उसके होने वाले पति का नाम लिखा होता है, आपने भी लिखवाया होगा मेरा नाम? लाइए मैं आपकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढूं। अहाना ने कोई एतराज़ नहीं जताया, पलके उठाए उसे एकटक देखने लगी, जबकि अक्षय का पूरा ध्यान अब उसकी मेहंदी में अपने नाम को ढूंढने में लगा था।